आज भी आप जब भी कायनात को देखते हैं तो आपके दिल में एक दफ़ा तो ख्याल आता है कि अल्लाह के कितने रंग हैं। इसीलिए फिर अगली आयात 17 से 25 में खालिक के एहसानात और बंदों की नाशुक्री। ये भी एक बड़ी अजीब बात है, जैसे बच्चे अक्सर अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, उनकी की हुई मेहनतों को वैल्यू नहीं देते, इसी तरह मखलूक भी खालिक की बात नहीं मानती। तो अल्लाह ताला ने यहाँ सवाल का अंदाज़ है, अफा मन यखलुक, क्या वो जो को पैदा करता है बराबर हो सकता है उसके जिन्होंने पैदा नहीं किया? अफला तज़क्करून। ये सारी बात एक है शिर्क की, इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। असल में ये मक्की सूरतें मक्का के माहौल को सामने रख कर देखिए और आज अपने माहौल को देखिए, कौन सी सड़क है और कौन सी गली है जहाँ शिर्क का कोई मज़हर नहीं है? सीधे साधे भी लोग और पढ़े लिखे भी लोग अपने कामों के लिए अल्लाह के गैर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने इसमें कितने दलाइल दिए कि तुम जब अल्लाह वाली बातें किसी इंसान में देखते हो या अल्लाह से जो मांगना है वो दूसरे से मांगते हो तो तुम नाशुक्री करते हो। लिहाजा ऐसी कौमों पे जो पकड़ आई उसका तذکرہ आगे है आयत 26:7 में कि अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आया जिसका गुमान भी नहीं था। कद मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक मकर किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, फिर आ गया अल्लाह उनकी बुनियादों पर और फिर वैसे गिरी कि जैसे छतें नीचे गिर गईं। जलजले आ गए, तूफान आ गए, ज़मीन ने सिंक होल बना दिए। आज भी अमेरिका की कई स्टेट्स ऐसी हैं कि जो इतने बड़े रिस्क पे हैं, जैसे फ्लोरिडा, अगर आप में से किसी ने अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत जाना हो तो फ्लोरिडा पूरी स्टेट जो है ये समंदर का किनारा है। बिल्कुल वहाँ रहते हुए वहाँ के लोगों से ये बातें हमने सुनी भी हैं और अखबारों में आप भी पढ़ लीजिए। एक घर है 2 मंजिला, बिल्कुल बीच व्यू कह लीजिए या सी व्यू कह लें, एक फ्लोर पे एक भाई सोया है, दूसरे पे दूसरा सोया है, एक ऊपर वाले पे एक नीचे पे है। जब ऊपर वाले फ्लोर वाला सुबह उठा है तो नीचे वाला पूरा फ्लोर ज़मीन में जा चुका है और घर का सिर्फ ऊपर की टॉप ऊपर है, बाकी सब ज़मीन में। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। और हदीस है कि आमद के करीब खसफ होंगे, इसको खसफ कहते हैं। कारून का अंजाम हुआ था ना, उस के साथ भी खसफ हुआ था और आज भी वो ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। तो क्या ये ज़मीन जिस पे हम इतना दंदनाते हैं, ऐसे गलत काम करते, कभी सोचा कि अभी ज़मीन फटे और हम इसमें गिर जाएं? और अल्लाह कहते तुम्हें पता ही ना हो, क़यामत के दिन तुम जब इस अपने लोगों के सामने आओगे जिनको तुम अल्लाह के वाली खूबियाँ देते थे, वहाँ तो तुम्हारे झगड़े ही बहुत होंगे। तो शिर्क की इस कायनात में कोई जगह नहीं, ये आपको सूरत नहल में बार बार दिखेगा। एक तरफ कायनात की चीज़ें और दूसरी तरफ शिर्क है। और आगे फिर आयत है 28 से 9, कब्र जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है या फिर जन्नत के बाग़ों में से एक बाग है। हदीस में पता चलता है अल्लज़ीन ततवफ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग जिनको फौत करते हैं फरिश्ते इस हाल में कि वो अपने नफ्स पे जुल्म कर रहे थे। कहा जाता है फ़लक़बुस्सलम, वो बड़ी उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं हम तो वो करते ही नहीं थे कोई बुरा काम जो तुम कह रहे हो। और अल्लाह कहते हैं कि ये जो बातें कह रहे हैं अल्लाह तो उसको खूब जानता है। फ़दखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, ये आयत अजाब कब्र की दलील है। कुछ लोग कहते हैं कब्र का अजाब नहीं होगा, जो कहते हैं होगा वो इस आयत को दलील देते हैं। अल्लाह के तफल भी समसल मतकबरें, आप में आज रहकर जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप को तकबर से पाक कर लें, शिर्क से पाक कर लें और ऐसी बहसों में पढ़कर जिससे आपका मेरा कोई अमल का नुक्ता नहीं, अपने आप को बामल कीजिए। उसके लिए कुरान खुलेगा। तो आयत 30 से 31 में कुरान को खैर कसीर कहा जा रहा है। वकील लिल्लज़ीन तक़ू, और कहा गया उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा किया, यानी उनसे कहा जाएगा या कहा गया था कि ये क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने। जैसे जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं तो कोई आपसे बाद में पूछे आज क्या कहा, आज क्या सुना, 14वें पारे में क्या आया, लोग पूछते हैं ना क्लासेस में जाने वालों या सुनने वालों से। तो तकवा वाले जिनके दिल में अपनी हिदायत की तड़प लग गई है, जो ख़ुद को बदलना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं? कालू खैरा, खैर खैर है भाई, हर रोज़ हमें तो खैर ही मिलती है। आज कुछ लोग कहते हैं कुरान पढ़ा तो फ़ायदा हुआ ये वो, भाई क्यों नहीं होगा? कुरान जिस लेवल पे भी आप पढ़े पढ़ाएंगे लोगों को फ़ायदा होगा। लिल्लज़ीन अहसन फ़ी हाज़िहिल दुनिया हसना, ये दुनिया की भी भलाई का एक दरवाज़ा खोलता है और आखिरत की तो खैर ही, और मुत्तकीन का अंजाम बहुत अच्छा होगा, वो जन्नत है जिसमें वो दाखिल होंगे, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। असल बात पता क्या है कि हमने इस कुरान की वो वैल्यू नहीं पहचानी जो इसकी थी। शायद हमें असली और नकली सोने का फ़र्क भी पता है, इमिटेशन एंड रियल गोल्ड की वैल्यू भी पता है, आर्टिफिशियल और चांदी का फ़र्क भी पता है, लेकिन हमें इस कुरान की जो खैर है ना वो नहीं पता। शायद इसी वजह से हम अपने इर्द गिर्द दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, उलझनों में पड़े रहते हैं, लेकिन इस कुरान के करीब नहीं आते। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये खैर कसीर हमारी ज़िंदगी में खुल जाए, और जिसकी ज़िंदगी में कुरान खुलेगा ना, और वाकई उसने फिर आसन हिस्सा उसका लेकर यानी उसमें से अमल का मामला लिया, तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। आयत 32 में इस बात की दलील है। क्या अल्लज़ीन ततवफ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग जिनको फौत करते हैं फरिश्ते, इस हालत में कि वो बड़े तैयब थे, पाकीज़गी थी, यानी पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, उस जुमले को याद कीजिए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, तौहीद पे जमे हुए लोग, जब उनकी मौत आती है तो यकूलून सलामुन अलैकुम, फरिश्ते उसको आके क्या कहते हैं, सलाम करते हैं। अक्सर आपने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना होगा, मौत के वक़्त मेरे बाप जवाब देने लगे, तो इससे पता चलता है कि फरिश्ते आके सलाम करते हैं और खुशखबरी कह देते हैं, उदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ, बिमा कुंतुम तामलून, उन अमाल की वजह से जो तुम अमल करते थे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बना दे, और हमें लेने के लिए बेहतरीन फरिश्ते आएँ जिनके चेहरे सूरज की रोशनी जैसे हों। अहादीस में आपको बड़ा खूबसूरत मंजर मिलता है नेक इंसान की रूह के निकलने का और बद के निकलने का, आगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तस्कर आएगा। लेकिन आगे आयत 33 से 34 में पैगाम क्या है, नाफरमानों को किस बात का इंतज़ार है, यानी सब कुछ तो पता चल गया, सब कुछ तो अल्लाह ने बता दिया, लेकिन हल यंजुरू ना, नहीं ये इंतज़ार करते मगर इस बात का कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए। मतलब यह है कि जिसको बात नहीं माननी वो नहीं मानता। ऐसे लोगों के पास जब अल्लाह की पकड़ आती है या इनकी मौत का वक्त आता है, तो उस वक़्त ये बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। फिर आयत 35 में शिर्क के लिए बज़ाहर एक खुशनुमा जवाज़ जो उस दौर के लोगों ने भी दिया और आज भी लोग देते हैं, और वो क्या था, वक़ालल्लज़ीन अशरकू, और कहा उन लोगों ने जो शिर्क करते थे, लौ शा अल्लाहुमा अबदना मिन दूनिही मिन शई, ये जुमला नोट कीजिए, कहते थे अगर अल्लाह ना चाहता तो हम तो बिल्कुल भी कोई शिर्क ना करते, और ना हमारे बाप दादा करते, और ना हम कोई चीज़ हराम करते उसके सिवा, यानी अपने शिर्क का इल्ज़ाम भी अल्लाह पे लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अपनी ज़ुबान से, अल्लाह चाहे तो रोक ले, भाई आप शराब पी रहे हैं, अच्छा भाई अल्लाह ने रोकना हुआ तो रोक लेगा। तो यहाँ इस बात की बात है कि लोग अपनी गुनाहों को दूसरों के नाम पे पेश करना चाहते हैं। फिर आयत 36 से 39 में तागूत से बचना है, और तागूत क्या है, हर वो इंसान, मुआशरा, सिस्टम, ताकत जो आपको अल्लाह के हुक्म से रोक दे। वलकद बस नफ़ी कुल्ली उम्मत रसूला, हमने बेशक हर उम्मत की तरफ एक रसूल भेजा, उसका पैगाम क्या था, नेबुदुल्ला, अल्लाह की इबादत करो, वजतनेबु तागूत, तागूत से इज्तनाब कर लो। क्या पता चला कि अम्बिया किराम की असल दावत जो थी वो क्या थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस कलमे से पहले ला की तलवार से सारे तागूतों के सर कलम कर दो। इस कायनात में इससे बढ़कर और कोई खूबसूरत बात नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह की कदर क्यों नहीं करते तुम, जबकि वो साहिबे कुन फयकून है, इन्नमा कौलुना अली शयिन इज़ा अरदनाहु अन नकूल लहू कुन फयकून। हमारा कौल तो किसी चीज़ के लिए भी बस यही होता है कि जब हम उसका इरादा कर लेते हैं तो हम कहते हैं हो जा, वो हो जाता है, बी और डन, हो जा और हो गया। आपको मुझे कोई भी काम करना कराना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो वैसा नहीं होता, कितने मीन्स यूज़ करने पड़ते हैं, फिर भी नतायज वो नहीं आते। अल्लाह की पावर, अल्लाह की कुदरत क्या है, लस कुन से, और कुन भी कोई कहना नहीं पड़ता, ये भी इरादा ही है एक, अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करते हैं वो हो जाता है। और हम अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं, कभी आपकी कोई दुआ रुकी हो, हालात नहीं बदल रहे, कोई इस तरह है, कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं हो सकता वो नहीं, तो आप क्या करें कि अल्लाह तू तो साहिबे कुन फया कुन है, इसकी सेहत पे कुन कह दे, अल्लाह मेरे बिगड़े बच्चे की हिदायत के लिए कुन कह दे, अल्लाह मेरी बेटी की परेशानी पे उसकी खुशी का कुन कह दे। आप देखेंगे कि आप खुद एक एनर्जी फील करेंगे कि ऐसे लगता है कि जैसे अपने बंद दरवाज़ों को खटका दिया है। और उसके बाद अब आयत में 41 से 42 हिजरत की खूबी है। याद रखिए, जब हालात ना बदल रहे हों, जब कोई भी काम अपनी जगह पे ठीक ना लगे, तो उस काम को, उस जगह को, या उस तौर तरीके को, या उस आदत को छोड़ देना चाहिए। ये एक हिजरत का वसी सिनेरियो है। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाही, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रस्तों में हिजरत की इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, लनुबव्वियन्नहुम फिद दुनिया हसना, अलबत्ता ज़रूर हम उनको ठिकाना देंगे दुनिया में अच्छा। वल अजरुल आखिरत ही अकबर, और आखिरत का अजर तो बहुत ही अच्छा है। लौ कानू यालमून, शर्त एक है, अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। दो खूबियाँ अपने अंदर ले आइए, सब्र और तवक्कुल। आप ये दो काम कर लें, बड़ी से बड़ी हिजरत आसान हो जाएगी। मक्का से हिजरत करने के इशारे अभी ना सूरतों में मिल रहे हैं, हबशा की तरफ हिजरत के इशारे हैं। यानी जिस माहौल में नेकियों पे कायम रहना मुश्किल हो जाए, उस माहौल को छोड़ दो, उस इंसान को छोड़ दो जिधर बैठ के तुम्हें गलत कामों का शौक आता है। हर वो आदत छोड़ दीजिए कि जो बाद में आपको शर्मिंदा करती है। और इसके बाद फिर आयत 43-44 में कुरान की डिक्शनरी हदीस है। हुज्जियत हदीस के बारे में ये बड़ी खूबसूरत आयात है। और वो क्या है, दुनिया में हर जुबान डिक्शनरी की मदद से सीखी जाती है। अब आप और मैं कुरान पाक पढ़ें, माशाल्लाह आज हमारा 14th पारा पूरा हो रहा है। कुरान में आपको हर चीज़ की तफसील नहीं मिलती, तस्करे मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, लेकिन बात सच है कि हदीस के बग़ैर आप कुरान नहीं समझ सकते। आज के दौर में एक बहुत बड़ा फितना जो उम्मत मुस्लिमा के कुछ लोग पेश कर दे रहे हैं, वो क्या है कि हदीस को ना मानो। मुंह से नहीं कहते, हदीसों के बारे में बातें गलत करते हैं। हदीस पता नहीं सही है कि नहीं, 1400 साल पुरानी बातें, कौन लिखता था, और नऊज़ुबिल्लाह सहाबा ने क्या किया, फिर ताबईन ने क्या किया। तो लिख लीजिए, आज ही हमने पढ़ा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मतलब ज़िक्र क्यों आया था, आप समझिए। यहाँ वहाँ आ सकता था ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल क़ुरान, तो क़ुरान क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि नबी पे कुरान के साथ हदीस भी नाजिल हुई। वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, हम सूरह नजम में पढ़ेंगे आगे 27वें बारे में। तो नबी पर जैसे कुरान नाजिल हुआ, वैसे हदीस नाजिल हुई। आपने फरमाया, इन्नमा उतीतु, बेशक मैं दिया गया हूँ कुरान, व मिसलहू माहू, और उसी के साथ उस जैसी चीज़। तुम्हारे नबी को दो चीज़ें मिली, कुरान और हदीस। अब ये एक लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन आज एक दुआ कीजिए कि हमने अल्लाह के नबी की हदीस को भी पढ़ना है, उसको भी सीखना है। और इसमें ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ है ना, लितुबय्यिना लिन्नास, इसको समझ लें, ताकि आप लोगों के सामने वाज़े करें। अल्लाह के नबी ने कौली और अमली तौर पर कुरानी अहकामात को लोगों के लिए वाज़े किया। तो हदीस कुरान की ताबीर और तशरीह है। आयत नंबर तो आपने नोट कर ही लिया है। अगर हदीस को काट देना, तो आप कहते हैं कुरान क्या है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कह लें। आज आप अक्सर कहते हैं ना कि लोगों ने कुरान से अपने मतलब की बातें निकाल ली हैं, वो वहीं निकली हैं जहाँ से उन्होंने हदीस की डोरियाँ काट दी। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस, यानी अल्लाह के नबी की बात, सुन्नत और कुरान को समझने की तौफीक दे। और अगर कभी ऐसा किया है, तो अल्लाह के अजाब से हर वक्त डरते रहो। आयत 45 से 47, अफ़ामिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआति, क्या ये बेखौफ हो गए हैं गलत काम करने के बावजूद कि अल्लाह इनको ज़मीन में धंसा दे, या इन पर अजाब ऐसी जगह से आ जाए जहाँ से इनको शऊर भी ना हो। कभी इनके लेटने में, इनकी करवटों में अल्लाह पकड़ ले और ये आजिज़ नहीं कर सकेंगे, या फिर अल्लाह इनको किसी हाल में पकड़े। आप देखिए, लोग रात को सोते हैं और जलजले के झटकों से उठते हैं। सुनामी जहाँ आता है अमेरिका में, हर साल लुइसियाना स्टेट में एक आध समंदरी तूफान आता है। किसी को कैटरीना कहते, किसी को रीटा कहते, किसी को कुछ, और हर साल लुइसियाना से लोग फिर ह्यूस्टन, टेक्सास और जो भी है जॉर्जिया, इधर मूव होते हैं। रोक नहीं सक रहे। जब वो आती है आफत, तो फिर उस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उसको रोक लीजिए। अल्लाह यहाँ ये कह रहा है कि तुम तो नाचते हो, कूदते हो, उछलते हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये ज़मीन फटेगी और गिर जाओगे? और ऐसा एक वाकया किसी अरब मुल्क में हुआ था। डांसिंग फ्लोर पे लोग रक्स कर रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं किसी खुशी के नाम पे, और एकदम ज़मीन खुली है और वो पूरे का पूरा डेस्क वो नीचे चला गया। तो क्या पता चला कि ज़मीन पे चलते फिरते भी फील कीजिए कि अल्लाह किसी वक्त भी हमें पकड़ सकता है। फिर आगे आयत 48 से 50 में, हर चीज़ का साया भी अल्लाह को सजदा कर रहा है तो तुम भी इसको सजदा करो। यानी इसमें फिर आयत 50 जो है ये सजदे की आयत है, मुराद ये कि कायनात पूरी की पूरी अल्लाह के आगे झुकी हुई है, तुम भी उसके आगे झुक जाओ। फिर उसके बाद आयत नंबर 51-52 में, दो मामूद ना बनाओ। ये बड़ी अहम आयत है, इसको अगर आप कभी अपने पास रिमाइंडर्स में नोट कीजिए ना, कि एक तो आज ट्रिनिटी की बात हम सुनते हैं, अकीदा तसलीस, लेकिन जो यूनानी कल्चर था ना, उसमें दो खुदाओं की बात करते थे, एक ऊपर का एक नीचे का, एक को यजदा कहते थे एक को अहरमन कहते थे। और हिंदू धर्म में भी सुना होगा ऊपर वाला नीचे वाला, एक आसमान वाला एक नीचे वाला, इला एक ही है। किसी गाड़ी के दो ड्राइवर हों तो गाड़ी चलती है। आप किचन में काम कर रही हैं, यकीन करें आपके साथ कोई दूसरा बंदा आ जाए आपको हाथ पांव पड़ जाते हैं। एक ही खाने में दो लोग चम्मच फेरे, या तो उस दिन डबल नमक डल जाएगा या डलेगा ही नहीं। कायनात वाहदानियत पे, तौहीद बड़ी खूबसूरत इकाई है, तो लिहाजा दो माबूद नहीं बना सकते तो ज़्यादा कैसे बना सकते हो। फिर इसके बाद आयत 53 से 56 में, हर नेमत अल्लाह ही की अता करदा है, वमा बिकुम मिन नेमतें फमिन अल्लाह। इस पे ज़रा सा रुक के सोचिए, मुझे क्या कुछ मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला है, तो क्या ये नेमतें मुझे किसी और ने दी हैं अल्लाह के सिवा? कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन लोगों का हाल क्या है, अल्लाह की दी हुई नेमतों को पाकर उसी के साथ शिर्क करते हैं, लियाकफुरु बिमा आतैनाहुम, ताकि इनकार करें ना शुक्री करें उस चीज़ की जो हमने उनको दी। कोई बात नहीं, फ़ायदा उठा लो, अनकरीब तुम जान लोगे। और इसके बाद अब आगे एक ऐसी प्यारी नेमत जिसको अमूमन लोग नेमत नहीं समझते, उसका तस्कर है, और वो है बेटी। तो आयत नंबर 57 से 60 का टॉपिक लिख लीजिए, बेटी रहमत है। वयजलून लिल्लाहिल बनात, वो अल्लाह की तो बेटियां मुकरर करते हैं, हालांकि पाक है वो इससे। ये तो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन अपना हाल के वाइज़ा बुशरा अहदुहुम बिलउंसा, फिर जब उनमें से किसी को खुशखबरी दी जाती है बेटी की, उसका चेहरा तो स्याह हो जाता है, वो गम से भर जाता है। यह तवारा मिनल कौम, अपनी बिरादरी अपनी कौम से छुपता फिरता है उस बुराई की वजह से जो उसको लगी। यानी बेटी की पैदाइश मक्का वालों के और अरबों के नज़दीक आर था। दो तीन वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे, कभी कहते हैं कि ये पराया धन है, कभी कहते हैं इसकी वजह से दौलत बाहर चली जाएगी, कभी कहते फिर दामाद आ जाएगा तो उसके नखरे देखने पड़ेंगे। अल्लाह ने इन आयात में बता दिया कि बेटी रहमत है, और नबी ने अपने तरीके से भी बता दिया क्यों रहमत है, क्योंकि बेटी अल्लाह की अता है। नापसंदीदगी जाहिलियत का तर्ज अमल था, और ऐसी बेटियां जहन्नुम से आड़ होंगी। आज भी आप खुद अपने ऊपर ले जाइए, अल्लाह आपके बेटों को भी सलामत रखे, आपकी बेटियों को भी। लेकिन अगर आप 40-50 के बिटवीन की एज में हैं, आप बताइए कि आपकी जवान बेटी आपका ज़्यादा ख्याल करती है या आपका उसी एज का जवान बेटा? बेटे तो बल्कि और भी ज़्यादा रिबेलियस होते हैं, तो फ़र्क बेटी बेटे का नहीं है। असल बात यह है कि बेटी से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी की भी बेटियाँ थी, आपने उनसे भी मोहब्बत की, तो लिहाजा बेटियों को रहमत समझिए।